जब से हम बच्चे बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें सभी फिकरातों से फारिग कर दिया है। ये केवल बात नहीं, मैं समझती हूँ हम सबका ये अनुभव है कि बाबा ने सद्ज्ञान की रोशनी देकर और उनकी सर्व शक्तियों का साथ देकर सच में हमें चिंताओं से फिकरातों से मुक्त किया है। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग अनेक चिंताओं के साथ सोते हैं, अनेक चिंताओं को लेकर के उठते हैं, क्योंकि उनके सामने जो भी बातें आती है, चाहे खुद के कर्मों के कारण या समाज, प्रकृति, व्यक्ति के तरफ से आती है, वो उसे खुद ही उनका सामना करना होता है, उसे खुद उन परिस्थितियों को फेस करना होता है। उनके पास न जीवन का सही ज्ञान है, न स्वयं की शक्तिशाली स्थिति है, और न ही परमात्मा के साथ का अनुभव वे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये तीनों बातें हैं, बाबा के सद्ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है। विभिन्न महात्माओं, धर्मात्माओं, मनुष्यात्माओं, हर एक अपने अपने चिंतन अनुभव की बातें हमारे सामने रखते हैं। ये अनेक प्रकार की मनुष्य मतें खुद के अल्पज्ञ बुद्धि की मतें व्यक्ति को मुंझा देती हैं, और इसलिए हम चिंता में चले जाते हैं। लेकिन बाबा के सत्य ज्ञान से हमारे जीवन की और इस संसार जगत के जो भी सनातन सत्य हैं, जिन सिद्धांतों पर ये संसार चल रहा है, जीवन चल रहा है, वो सभी सत्य हमारी बुद्धि में स्पष्ट हैं, जिसके कारण मैं समझती हूँ हमारी आधी उलझने, चिंताएं, फिकरातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है ना। भय और चिंता अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। जब सही समझ मिल जाती है और उस ज्ञान को जीवन में धारण कर बाबा की याद से जितना बुद्धि को हम दिव्य बनाते हैं, अपने सद्विवेक को जगाते हैं, तो कोई हमें मुंझा नहीं सकता, भयभीत नहीं कर सकता, उलझा नहीं सकता। जब मूल सत्य स्पष्ट नहीं है तो मूंझ होती है, ये करें कि वो करें, उसमें इंसान उलझ जाता है। लेकिन दो दिन पहले ही संडे जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली, बहुत अच्छा लिंक बाबा ने बताया कि निर्विकल्प स्थिति न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हैं, और जब तक सही निर्णय नहीं होता, परिस्थिति का, बात का निवारण नहीं होता, और जब तक उस बात का निवारण नहीं होता, उसका एक आवरण, टेंशन, प्रभाव हमारी स्थिति पर बना रहता है। इसलिए बाबा ने निर्विकल्प आत्म स्थिति बनाने के लिए और निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कसौटी दी कि साकार बापा के गुण और चरित्र से हर बात को वेरीफाई करें। अगर हमारा ये लक्ष्य दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए, मुझे वैसे ही करना है जैसे बाबा ने कहा है, किसी भी हालत में श्रीमत मुझे नहीं छोड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ हमारा छूट जाएगा, हम गंवा देंगे, हमारा चला जाएगा, उसके कारण हम श्रीमत से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। माना श्रीमत में मनमत मिक्स करके बाजी को जीत लेते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है? पहले हम अपने आप में क्लियर हो जाएं। जब खुद में क्लियर नहीं है तो कोई भी बात हमें मुंझा सकती है, हम चिंता में चले जाएंगे। लेकिन मेरा अगर ये पूर्ण समर्पण है कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में श्रीमत अनुसार ही करना है, चाहे कुछ भी मेरा चला जाए, मुझे मेरे कर्म को खराब नहीं करना है, मुझे गलत तरीके से प्राप्ति नहीं करनी, चाहे मुझे सेवा करनी है, सेवा की वृद्धि करनी है, लेकिन जो कुछ करना है वो श्रीमत अनुसार ही करना है। अगर ये हमारा बुद्धि में फैसला है तो मुझे कुछ भी लॉस करना पड़े, मेरी दृढ़ता बनी रहेगी, और अंदर से मुझे ये विश्वास रहेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर श्रीमत पर है तो जवाबदार बाबा है। बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर चलने में देवाला भी निकल जाए लेकिन बाप जिम्मेवार है। बेशक मैं अपने आप को फिर खड़ा करने के लिए प्रयास करूं, लेकिन वो प्रयास श्रीमत का ही होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा अपना फैसला क्या है और कहां तक मेरा समर्पण है। जब सब कुछ मेरा सलामत रहे, परिस्थितियां मेरे अनुकूल रहे, तब तो मैं बाबा बाबा श्रीमत श्रीमत करूंगी। परीक्षा तो तब होती है कि जब हमारा सब कुछ चला जाता है, लेकिन तब भी चिंता और फिकर तब नहीं होगी कि मेरा है ही क्या जो गया। जो भी था वो तो बाबा ने ही दिया था, इसलिए अंदर से बाबा के प्रति समर्पण, खुद को खुद हम उसको पकड़े नहीं, मालिक न बन जाए, न्यारा रहे, तो हमें चिंता नहीं होगी, बेफिकर। शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। बेफिकर माना केयरलेस नहीं, हमें कोई परवाह ही नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए इंग्लिश में जो हमारी मुरली में ट्रांसलेशन होता है कि केयरलेस माना अलबेलापन, केयर फ्री माना बेफिकर, केयर फ्री चिंता मुक्त, बार बार मन उसमें जाए, सोचता रहे, वो नहीं होना चाहिए। केयर फ्री, जैसे एग्जाम्पल तो हम सुनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस करना, जब खुद के सामने स्थिति आ जाए तब तो कहेंगे कि प्रैक्टिकल में ज्ञान अप्लाई किया है। वो कहते हैं ना कि भाई वो नाव में पति पत्नी बैठे थे और अचानक पति तलवार उसके गले पर रखता है, लेकिन उसे डर नहीं लगा। तो वो पूछता है कि अरे मैंने तुम्हारे गले पर तलवार रख दी, तुम्हें भय नहीं हुआ? बोला नहीं, क्योंकि आप मेरे हैं, मुझसे प्यार करते। अगर बाबा में ये विश्वास और प्यार, क्योंकि श्रीमत पर चलने में मेरा कल्याण हो नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल में विश्वास रहे। मैंने कहा ना, जब सब कुछ अनुकूल है, फेवर में है, तब तो श्रीमत पर चलना सहज है। लेकिन हम तो सीखें इतिहास के एग्जाम्पल से भी, चाहे गांधी जी के जीवन, कलयुग का अंत, 100 वर्ष पहले का, अंदर अंदर का मानवी, उसके अंदर भी इतने वैल्यूज कि चाहे कितना भी मार खाना पड़े लेकिन अहिंसा से ही स्वराज्य चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। अंत तक उस बात में वो पक्के रहे, चाहे कितना भी सितम सहने पड़े। तो श्रीमत हमारे लिए परफेक्ट चीज है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या है, श्रीमत से हमारे सामने स्पष्ट है। इसलिए मेरा इतना बाबा के प्रति समर्पण हो कि मेरे जीवन का जवाबदार बाबा है, अगर मैं श्रीमत पर हूं तो। हो सकता है मेरे कर्मों के हिसाब किताब, बाबा कहते हैं ना कि जो हिसाब किताब हमने बनाए हैं वो तो हमें चुकाने ही होते हैं, उसको क्षमा नहीं हो सकती। जो हिसाब बन गए वो तो मुझे चुकाने ही पड़ेंगे, चाहे मैं योगी बन जाऊं, बाबा के घर में आ जाऊं। खुद के हिसाब किताब चुकाने होते हैं तो हम कई बार बाबा पर नाराज हो जाते हैं कि बाबा देखता नहीं है, बाबा मदद नहीं करता है, बाबा क्या कर रहा है ना? लेकिन हम चेक कर लें कि ये मेरे हिसाब किताब है या मेरे हिसाब नहीं है, और सत्य श्रीमत पर चलने के कारण सहन करना या सामना करना पड़ रहा है, वो हमें उस समय परखना पड़ता है। बाबा कहते ना, जब खुद के हिसाब किताब से हमें सहना पड़ता है तो वो सहन करने की बात नहीं है। बाबा के लिए मैंने इतना सहन किया, वास्तव में वो सहन किया की बात नहीं है, ये तो कर्म की सजा है मुझे, है ना? जो हिम्मत धीरज बाबा की याद से मुझे चुकाने हैं। तो अगर खुद को जब स्पष्ट है कि मेरे खुद के कर्म की ये तो सजा है, वो हिसाब मैं चुका रही हूं, तो मन दूसरे के लिए उलाहना नहीं निकालेगा। हम धीरज रख सकेंगे, हिम्मत रख सकेंगे। और मेरी भूल नहीं है, मैं श्रीमत पर हूं, पर दूसरे श्रीमत पर नहीं है और हमें सहन करना पड़ रहा है, तो दो चीज कि वो हमारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण हो जाएगा कि हम बाबा के खातिर सहन कर रहे, और इससे हमारी स्थिति और पावरफुल बनेगी और रिजल्ट कल्याण प्रगति का ही होगा। तो बेफिक्र अवस्था रखने में मैं समझती हूं ज्ञान प्रैक्टिकल करना होगा, तब आत्मा अंदर से निश्चिंत चिंता मुक्त रह सकेगी। दूसरी बात, जो समय की पहचान बाबा ने हमें दी है, तीन बातें बाबा ने कही है कि एक तो ये अंत का समय है, अंत का समय है, कहते हैं ना भाई युद्ध होता है तो भाई अंतिम मरने तक व्यक्ति लड़ लेता है, अपना ऐसा प्रयास कर लेता है कि फना हो जाए, खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं ना माया भी अंतिम दांव लगाएगी, है ना, किसी भी रूप से श्रीमत से चलित करने की बातें हमारे सामने आएगी। अंत का समय है, जैसे बाबा ने नहीं कहा भाई पुराना मकान होता है तकलीफें शुरू हो जाती, शरीर बूढ़ा होता है अंग कमजोर होने लगते हैं, बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए यह अंत का समय है, जो कुछ हो रहा है प्रकृति के तरफ से, समाज में हो रहा है, आत्माओं से हो रहा है, खुद के हिसाब किताब में हो रहा है ना, ये फाइनल क्लियरेंस का समय है, हिसाब किताब क्लियर करने का ये समय। अब तक हिसाब किताब लिंगर ऑन होता रहा, बैक फॉरवर्ड होता रहा, भी आगे की इतनी बचत है या आगे का इतना उधार है। पर जैसे लौकिक दुनिया में भी मार्च एंडिंग माना फाइनल, पूरे वर्ष का हिसाब क्लियर करना, तो संगम युग फाइनल क्लियरेंस का समय। इतने जन्मों में जो कुछ हमारा माइनस प्लस अच्छा बुरा हुआ और जो हमारा हिसाब बना जमा का या घाटे का, ये समय है अब हमें चुकाना है। इसलिए न सोची न समझी, बाबा कहते न ख्याल न ख्वाब में ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी। दूसरा बाबा ने कहा ये परिवर्तन का समय है, पैराडाइम शिफ्ट का समय है, चेंज हो रहा है, टोटल अज्ञानता, आसुरी मत, असत्य से चली दुनिया अब पवित्रता, सत्य श्रीमत के अनुसार चलने वाली दुनिया रही, ये चेंज का पीरियड है। उसमें हलचल होती है, अचल बातें सर्वाइव कर जाती हैं, बाकी हलचल में खत्म हो जाती है। तो ये परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, कष्ट होता है। हम जैसे चलते हैं चलते रहे तो सहज लगता है, पर कुछ नया सीखना, नया स्वीकार करना, उसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ ग्रहण करना पड़ता है, मेहनत पुरुषार्थ कष्ट लगता है। तो ये परिवर्तन का समय है। बाबा कहते हैं आधा कल्प की माया की राजाई खत्म होगी तो ऐसे तो नहीं छोड़ेगी ना, फिर आएगी, नया नया रूप लेकर आएगी, पीछे पड़ेगी। बरसों से एक दुकान के ग्राहक है, अचानक उसे छोड़कर दूसरे के पास जाएंगे तो वो भी पीछे पड़ता है कि क्यों आप आजकल आ नहीं रहे। चेंज। और हमारा नेचर क्या हो जाता है कि जो है वो मेरा अंत तक चलता रहे, पर उसमें भी तो चेंज हो सकता है। पुराना छोड़े, नया स्वीकार करें, अपने आप को समझाना और तैयार करना पड़ता है। तो अंत का समय है, परिवर्तन का समय है। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो आधी बातें तो मन पर हावी होगी ही रहे। लोग क्यों क्वेश्चन में चले जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या क्या किया। बाबा कहते हैं ना, क्वेश्चन में चले जाते, क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्यांत की बातें समझाई है। बाबा ने पहले से हमें मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड कर दिया है कि ये सब होगा, और जैसे जैसे हम अंत के नजदीक जा रहे हैं, बाबा ने और ही दो बातें हमें कई बार बता दी है कि अचानक होगा, कुछ भी होगा। पिछली बार भी बाबा की मुरली में था, कुछ भी आपदा आ सकती है, सेकंड में फुल स्टॉप। वो स्थिति तभी रह सकती है जब मेरा ये विश्वास पक्का हो कि जो भी परिवर्तन होगा मेरा उसमें कल्याण होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल ज्ञान अप्लाई करना होगा, इसलिए अब तक का समय पढ़ाई का था, रिवीजन का था। जो भी डिफिकल्टीज आई वो पढ़ने में डिफिकल्टी आई, रिवीजन में डिफिकल्टी, एग्जाम का टाइम तो अब है। जब ज्ञान प्रैक्टिकल हम कहां तक कर पाते हैं, जैसे इस समय दो पावरफुल अथॉरिटी काम कर रही है, एक बाबा और दूसरा ड्रामा, ये दो पावरफुल अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं ना, जो बाप से भी नहीं मानेंगे, समय उनको सिखाएगा। तो ड्रामा भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। समय और परिस्थितियां हमें सिखाएगी कि भगवान क्या कहते हैं, हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था, है ना? और ये दोनों के लिए हम ज्ञान तो सुनाते हैं और समझते भी हैं कि बाबा भी कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है। लेकिन प्रैक्टिकल उस सिचुएशन में मुझे स्वीकार होगा तो मन शांत रहेगा, संकल्पों में नहीं जाएगा, चिंतित नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि सेकंड में फुल स्टॉप की बात किसके लिए है, आप खुद ही सोचो। नॉर्मल स्टेज में तो फुल स्टॉप की ही अवस्था रहती है ना। तो ये जो पॉइंट है, सेकंड में बिंदी लगाओ, पॉइंट है ही जीवन में परिस्थिति के बीच जब हम हैं तब लगाने की बात है। नॉर्मल स्टेज में तो बाबा बाबा ही होता है ना, और कौन याद आता है। पर जब कोई रिवर्स बात, मेरे फेवर की बात नहीं होती है, या लोक समाज के सामने मेरी महिमा मान शान के हिसाब की बात नहीं होती है तब मन चलता है ना, उस समय विश्वास रहे कि नहीं, अगर मैं सत्य हूं, श्रीमत पर हूं, मैंने दिल से जीवन भर बाबा को याद किया है, उनकी सेवा की है, भल उसमें मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैंने अगर जिगर से किया है तो मैं बाबा की मदद के पात्र हूं, और जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही होगा। तो ये अवस्था बना के रखना, अपने आप को समझाना और मन ठीक रखना, ये तब हो सकेगा। तो ये समय है कि मुझे अपने आप को ही खुद का टीचर बन, खुद को समझाना और खुद के बात में ज्ञान अप्लाई कर। देखो, और किसी की डेथ होती है उस समय ज्ञान समझाना सहज है, खुद के संबंध में रिलेटेड कोई भी आत्मा को होता है उस समय अवस्था रखना, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं ये पक्का करना, बाबा मेरा साथी है, कैसे वो मुझे मदद करेगा, है ना। अगर जीवन भर इस बात को हम अप्लाई करते रहे होंगे तो कड़े पेपर के समय, परिस्थितियों के समय, हम उन एक बल, एक भरोसा, वही विश्वास, वही आधार हम बना सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई जीत करके भी हारते हैं, कोई हार के भी जीत जाते हैं, उसका क्या अर्थ है ना, उसका अर्थ यही है कि दुनियावी रूप से शायद लॉस हो, पर सत्य के हिसाब से, ईश्वर की श्रीमत के हिसाब से वो जीते हुए होते। और कोई अपनी मनमत या आसुरी गुणों के आधार पर जीत भी जाए, पर वास्तव में सत्य के हिसाब से हार है। तो ये डिपेंड रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, है ना। जैसे भक्ति में क्या है, वो कहते हैं ना भाई, ये तो सुविधा का धर्म है, माना खुद को जो सहज लगे, अनुकूल लगे, वो पालन कर लेना, बाकी छोड़ देना, है ना। फिर धर्म नीति सिद्धांत नहीं, मेरे को अनुकूल है तो मैं पालन कर लूं। और कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं कि खुद को अनुकूल रहे ना रहे, पर मुझे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए का मीनिंग क्या है, कि धर्म का पालन करते हुए मेरा पराजय हो जाए, लॉस हो जाए, तो भी मैं उस सत्य और श्रीमत को छोड़ू नहीं, वहां ही तो अप्लाई करने की बात है ना। तो उस हिसाब से अगर बाबा, ड्रामा, ज्ञान, सत्य, खुद के सही कर्म में विश्वास है, तो अवस्था निश्चिंत रह सकती है, हम बेफिकर रह सकते हैं, मन रिएक्ट नहीं करेगा, हम गलत मार्ग नहीं अपनाएंगे और वो हिसाब किताब जब हमारा सेटल हो जाता है, हम अनुभव कर सकते हैं कि बाबा साथ है या मुझे मदद है। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में ही शायद ये कहा कि फिकर दे दो, फखूर ले लो। इंसान अपना प्रयास कर सकता है ना? गीता में जो बात कही है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। अच्छा, मुझे कर्म कैसा करना है, मुझे श्रीमत के अनुरूप कर्म करना है, ये फैसला है। अनेक लोग हमें राय देंगे, आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, जैसे वो करते हैं ऐसे आप करो, है ना? जैसे के साथ तैसा बनो, कई बातें हमारे सामने आएगी, लेकिन मुझे कैसे करना है, कर्म पर मेरा अधिकार है ना? कोई भी समस्या है, बात है जिसके कारण चिंता और फिकर होती है, मुझे उस समय जो भी कर्म करना है वो मुझे कैसा करना है, पहले तो ये स्पष्ट कर लो। श्रीमत के अनुरूप करना है, बाप दादा ने किया ऐसा करना है, फिर वो सहन करने का हो, सामना करने का हो, स्पष्टता करने का हो, फुल पॉइंट लगाने का हो, है ना? वैरायटी परिस्थिति अनुसार रेस्पोंड करने का होता है, पर वो मुझे कर श्रीमत अनुसार करना है, वो हमारा पक्का रहना चाहिए। तो मदद के पात्र हम हैं, बाबा की मदद मिलती है, वो विघ्न उन्नति का साधन बन जाता है। एक ने बहुत अच्छा कहा था कि सत्य की दिशा में कदम उठाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि तुरंत ही उसका फल मिले, उसके लिए धैर्य रखना होगा, क्योंकि परमात्मा की मदद अति पर मिलती है। हम तो बात आई नहीं और चिल्लाना शुरू कर देते, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, पुकारने लगते हैं, पर हिसाब किताब भी तो बीच में कोई चीज है जो हमें चुकानी है। इसलिए पहले हम अपनी शक्ति पूरी उसमें लगाते हैं। बाबा कहते हैं ना, अपनी शक्ति ही यूज नहीं की तो मदद की तो बात ही नहीं है ना। तो जो मुझ आत्मा को ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, सत्कर्म द्वारा दुआ की शक्ति, ये जो सारी शक्तियां हैं, पहले वो मुझे अप्लाई करनी होगी, और वो सब अप्लाई करने के बाद भी बात पूरी नहीं होती है तो अति पर उनके मदद की बात आती है। मैं कई बार ये बात सुनाती भी हूं कि रामायण में दिखाते हैं कि वे वो राक्षस पकड़ के उठा ले वे सीता को लंबा हाथ कर करके, तब तक राम कुछ नहीं करते, लास्ट में तीर मारते हैं, क्योंकि तब तक हमारी दृढ़ता, निश्चय, समर्पण, वफादारी की एग्जाम होती है कि ये कब तक मेरे प्रति वफादार रहता है। तो अति पर मदद मिलती है, ये हमें स्पष्ट रहे। बात आई और हम मदद के लिए चिल्लाने लगे, नहीं। बात आती है, उस बात को पार करने के लिए श्रीमत क्या है, वो श्रीमत मुझे अप्लाई करनी है, उसमें दृढ़ रहना है, बाद में मदद मिलती है। अच्छा, जो हमारे हाथ में है कर्म, वो हम कर सकते क्यों? उसमें गीता में कहा, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि फल केवल वर्तमान के कर्म के आधार पर नहीं आता है, फल आगे पीछे के कर्मों के हिसाब किताब अनुसार फल आता है। इसलिए मेरा अधिकार श्रीमत पर चलने में है, फल पर नहीं। मुझे उस लोभ से श्रीमत पर नहीं चलना है कि बाबा मुझे मदद करे, सफलता मिले, इसलिए मैं श्रीमत पर चलूं, उस लोभ से नहीं चलना है। मुझे प्राप्ति हो या ना हो, मैं सफल हूं या ना हो, मेरी जीत हो या ना हो, मुझे श्रीमत पर चलना है, बस ये बात होनी चाहिए। कई चीजें समय आने पर होती है, उसी क्षण नहीं हो जाते। इसलिए कहते हैं ना, टाइम एंड गॉड आर ग्रेट हीलर्स। ये दो हैं जो हमारे घावों को मिटाते हैं, या बाबा पर छोड़ दे या ड्रामा पर छोड़ दे, अपने कर्म को करेक्ट रखें, बस ये बेफिक्र रहने का साधन है। ओम शांति।
ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ अपने साथ है, करने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। छीन पहले भाग से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।